ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 87 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। प्रारंभ से ही हमारी सेवा के दो मुख्य साधन रहे हैं, सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। इस योग पद्धति को अपनाने से हमें जो मन की शांति मिली है, जो आत्मिक सुख मिला है, जो अतींद्रिय आनंद अनुभव हुआ है, वो शांति सुख आनंद विश्व की सभी आत्माओं को प्राप्त हों, इसी लक्ष्य से हमारे हर कार्यक्रम में राजयोग सत्रों का भी आयोजन होता है। राजयोग कोई क्रिया नहीं है जो घंटा आधा घंटा हम कर लें। राजयोग श्रेष्ठ विधि से जीवन जीने की कला है। यहां एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहां योगी जीवन बनाने का लक्ष्य है। इस योग का आधार कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई शास्त्र या गुरु नहीं है। इस योग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, ऐसे ऐसे अनुभूति की स्थिति पर आप पहुंचते जाएंगे। पूर्व दो सत्रों में कल आप सभी ने योग का आधार जिन दो मूल सत्यों पर है, वो दोनों मूल सत्यों के बारे में आप सभी ने समझ लिया है। हम स्वयं कौन हैं, जिस पर आप सभी ने समझ लिया है कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। योग अभ्यास करने वाले हम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। दूसरे सत्र में परम ज्योति बिंदु शिव परमात्मा के बारे में आप सभी ने समझ लिया है कि हम उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा से योग लगाएंगे, जो पिता परमात्मा शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता इन गुणों के सागर है इन शक्तियों के मूल स्रोत हैं। आज के सत्र में हम कैसे उस पिता परमात्मा से मिलन मनाए, उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, क्या राजयोग की विधि है, पद्धति है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और परमात्मा से हमें योग लगाना है। वो परम पिता परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। ना हम भौतिक है, ना परमात्मा भौतिक है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। स्क्रीन पर चित्र में देखिए कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो तो मेरे और आपके बीच कॉन्टेक्ट स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसको कहेंगे कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से दूर रहने वाले व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा एक दो के संपर्क में रहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम संकल्प शक्ति के माध्यम से मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयिम बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने आप को देखें कि हमने अपने मन और बुद्धि कहीं और अटैच कर दिए हैं, व्यक्तियों के साथ, वैभव के साथ, पदार्थों के साथ, बातों के साथ, व्यसनों के साथ, हमने अपने मन बुद्धि कहीं और अटैच कर दिए हैं। फिर परमात्मा मिलन के लिए हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। हम कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, औपचारिक क्रियाएं करते हैं, भक्ति में अनेक प्रकार के साधन सामग्री का आधार लेते हैं, फिर भी रिजल्ट तो यही है कि मन बुद्धि परमात्मा स्मृति में एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो परमात्मा आकर के जो सहज राजयोग सिखाते हैं, इसमें कोई क्रियाएं नहीं है, कोई साधनों का आधार नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम की शारीरिक क्रियाएं करते हैं। अब योग शब्द का अर्थ है मिलन मनाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब ये तो शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए भल आप आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, वो शरीर के लिए है। परंतु जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, उनसे मनोमिलन मनाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक आसन प्राणायाम की क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली आराम से बैठिए। यहां आप कुर्सी सोफा पर आराम से बैठे हैं, फिर भी अपने आप को देखिए, एक घंटे में, आधे घंटे में कितनी बार हम हिलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। राजयोग में कोई आसन की बात नहीं है। कई आसन प्राणायाम व्यायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती है कि बहनें, माताएं, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। यहां बिगर आसन आराम से बैठे हैं तो भी हम कितनी बार ऊपर नीचे होते, हमारे शरीर भी अब ऐसे रोगी कमजोर बन गए हैं। किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होके बैठे, मेंटली मन और बुद्धि से अटेंटिव होकर बैठना है, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा हम परमात्मा मिलन के लिए बैठे हैं। अभी हमें प्रभु चिंतन करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, शुभ चिंतन करना है। उस समय हमें और बातें नहीं सोचनी है, हमें अपनी घर गृहस्थी की नौकरी धंधे की समाज परिवार की बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। हम ये नियम बनाएं, प्रतिदिन सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय योग के लिए सर्वोत्तम समय है। फिजिकल हेल्थ के लिए भी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम समय है। इसलिए योग अभ्यास करने का सर्वोत्तम समय अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 4 बजे से 5 बजे का समय है। इसी प्रकार संध्या का समय भी उत्तम समय है। अगर संध्या के समय भी हम लक्ष्य रखें कम से कम 6:30 से 7:30 के बीच आधा घंटा भी योग अभ्यास करें। उस समय अगर कोई आवश्यक कार्य है वो भी अपनी योगिक स्थिति से करें, बाकी दिन भर कर्म योगी का समय है। जब भी 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 5 मिनट मिले हम अपने को फिर उस परम शक्ति परमात्मा से कनेक्ट करते रहे। तो सबसे पहली बात, राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। तो योग में हमें क्या करना है? भक्ति में तो हम माला फेरते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। इस प्रकार की औपचारिक क्रियाओं के द्वारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम भक्ति में माला फेरते हैं परंतु मन भी फिरता रहता है। इसलिए राजयोग में हमें ये रटने की, माला फेरने की औपचारिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, फिर वो भटकना शुरू कर देता है। क्या हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं? क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? नहीं। तो परमात्मा स्मृति के लिए भी हमें माला फेरने की आवश्यकता नहीं है। इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं, देखिए कबीर जी ने क्या कहा है, माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। इसलिए कबीर जी ने क्या सजेस्ट किया है कि हाथ का मन का छोड़ दे मन का फेर। हमें हाथ से माला के मन के फेरने की आवश्यकता नहीं है, मन रूपी मणके को फेरना है, मनोस्थिति को अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है। अब तक खुद को देह समझते रहे, बॉडी कॉन्शियस बन गए, जिस देह भान के कारण हमारा मन बहिर्मुखी बन गया है, संसाराभिमुख बन गया है। इसलिए देह संबंधों के दुनियावी विचार हमें आते रहते हैं। क्यों नहीं हम स्वचिंतन करें, आत्मचिंतन करें, ताकि मन अंतर्मुखी बनता जाए। यही कारण है आपको प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन का बताया गया, ताकि आत्मस्मृति आत्मचिंतन का अभ्यास करके हम अंतर्मुखी बने, स्व में केंद्रित हो सके, हम परमात्माभिमुख बने, परमात्मा चिंतन करें। इसलिए राजयोग में न माला फेरनी है, न कोई मंत्र रटना है। अक्सर भक्ति में हम अपने गुरुओं से, शास्त्रों से कोई न कोई मंत्र लेते हैं, श्लोक रटते हैं, जपते हैं। राजयोग में कोई शब्द मंत्र जपने की बात नहीं है। कई बार व्यक्ति मंत्र रटते हैं, श्लोक बोलते हैं, उनके अर्थ को भी नहीं समझते। जब हम अर्थ नहीं समझते हैं तो अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे। आप देखिए, परिवार में कई धार्मिक प्रसंग होते हैं, मांगलिक प्रसंग होते हैं, शुभ प्रसंग होते हैं। हम ब्राह्मण को, पंडित को, पुजारी को बुलाते हैं, वे श्लोक उच्चारण करते हैं। बताइए, उस समय बैठे हुए कितने लोग उसके अर्थ को समझते। ब्राह्मण पंडित श्लोक बोलते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं। जब हम अर्थ नहीं समझते हैं, अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए राजयोग में हम ये बताते हैं कि हमें मंत्र सिर्फ रटना नहीं है, उसके अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। सबसे उत्तम ये है, परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करें और फिर उस परमात्मा से प्रेम मंत्र में मुग्ध हो जाए। इसलिए कोई शब्द मंत्र रटने की, जपने की इसमें बात नहीं है, ना ही इस योग अभ्यास में हमें मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज नहीं करना है। हम अंतर्मुखी मन की स्थिति से, बुद्धि से, समझ पूर्वक परमात्मा स्मृति में स्थित नहीं हो पाए, तो हमें बताया गया कि मुख से आरती भजन गाए। हम कितना आवाज करते हैं, आप देखिए, हर बार त्योहार तिथि नक्षत्र पर घर में मंदिरों में माइक लगाकर कितने भजन कीर्तन प्रार्थना आरती गाते हैं आवाज करते हैं। आप देखते हैं श्रावण मास अधिक मास में कितना देर रात तक भजन संध्याओं का आयोजन होता है, कितना आवाज होता है। जबकि सत्य ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कल आप सभी ने आत्मा के परिचय में भी समझा, पिता परमात्मा के परिचय में भी समझा कि परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। वहां मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। हम आत्माओं का असली घर भी परम धाम शांति धाम है। हमारी ओरिजिनल नेचर भी शांति है। जब हम आत्माएं इस दुनिया में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, हमें ये फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, तब हम आवाज में आते हैं। इसलिए राजयोग में हम साइलेंस में बैठकर मन ही मन उस पिता को याद करते हैं। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, इसलिए अंतर के आवाज से दिल के सच्चे प्यार से उस पिता को हमें याद करना है। यहां आप देखते हैं कि जब योगाभ्यास के प्रारंभ में नए अभ्यासी भाई बहने होते हैं, हम निश्चित समय पर योग अभ्यास आरंभ करते हैं, तब ईश्वरीय ज्ञान का एक गीत बजाते हैं, साइलेंस के मधुर संगीत बजाते हैं। गीत मन में भाव उत्पन्न करते हैं, संगीत उस भाव को गति देते हैं। तो ये सहायक है, अनिवार्य नहीं है। जब हम स्वयं सत्य ज्ञान से भरपूर होते हैं, हमारा सच्चा प्यार परमात्मा से जुड़ जाता है, फिर हमें कोई गीत संगीत की भी आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा मन ही गीत गाता है, परमात्मा प्यार में मग्न होता है। इसलिए राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। तीसरी बात, अक्सर लोग पूछते हैं हम योग कहाँ लगाएं, ध्यान किससे केंद्रित करें। भक्ति में तो हम चित्र मूर्ति फोटो का आधार लेते हैं, राजयोग में हमें कहाँ योग लगाना है। अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सभी भी सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है, आप सभी भी ज्ञानी आत्मा है। अब आप सभी ने स्वयं का पिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर लिया है। अब आप विवेक से बताइए हमें बुद्धि योग किससे लगाना है, किससे लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से या फोटो से योग नहीं लगाना है। ये तो भक्ति में हम भगवान को मानते हैं, सही रूप से जानते नहीं हैं, तो हरेक ने अपनी अपनी मान्यता अनुसार, अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार, अपने अपने इष्ट देव के मूर्ति चित्र फोटो बना दी। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि परमात्मा एक है, परम ज्योति बिंदु स्वरूप है, कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा या देवात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है, हम स्वयं आत्मा भी ज्योति बिंदु है। इन चर्म चक्षुओं से ना हम अपने आप को देख सकते हैं, ना पिता परमात्मा को देख सकते। इसलिए परमात्मा कोई देखने की स्थूल भौतिक हस्ती नहीं है। इसलिए हमें मन और बुद्धि से उस ज्योति बिंदु परमात्मा से योग लगाना है। भक्ति में अनुभव भी है, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हैं, मन में दूसरी ही मूरतें घूमते रहती हैं। आखिर कब तक हम साधनों के आधार से चलेंगे, क्रियाओं के बल से अभ्यास करेंगे? हम अपने प्रेमियों को, स्नेहियों को याद करते हैं, उसके लिए कोई फोटो चित्र की आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा के लिए भी हम कब तक साधनों का आधार लेंगे? अब जबकि हमें सत्य ज्ञान मिला है, हम एक कदम आगे बढ़े, हम ज्ञान के आधार से मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा याद में एकाग्र होने का अभ्यास करें। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से देखने की बात ही नहीं, इसलिए मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परमात्मा को देखना है, उनको याद करना है। यहां जो भी चित्र फोटो आप देख रहे हैं, हमारे म्यूजियम में अनेकानेक ज्ञान के चित्र है, मॉडल्स है। हमारे सेवा केंद्रों को भी आपने विजिट किया होगा, हमारे सेवा केंद्रों पर भी ज्ञान के चित्र लगे हैं। ये चित्र ज्ञान समझाने के लिए हैं, परिचय देने के लिए हैं, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। ये बात आप मानेंगे कि अपने घर में जैसे चित्र हम लगाएंगे ऐसा ही हमारा चरित्र भी बनता जाएगा। अगर हम अपने घर में क्रिकेटरों के, एक्टरों के, जानवरों के, मित्र संबंधियों के चित्र लगाते हैं, उठते बैठते वो ही देखेंगे, उनके बारे में ही सोचेंगे, वैसे ही हम बनते जाएंगे। इसलिए क्यों नहीं हम सत्य ज्ञान के चित्र लगाएं, ताकि सत्य ज्ञान का चिंतन करें और वैसा ही स्वरूप हम बनते जाएं। तो हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से लगाना है। हमारे सेवा केंद्रों में सुबह शाम दोपहर तीन टाइम निश्चित समय पर क्लास होते हैं। उस समय योग अभ्यास कराने हम अनुभवी भाई बहने बैठते हैं। हमें योग कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से या ब्रह्मा से नहीं लगाना है, हमें योग परमात्मा से लगाना है। जैसे बहन फिजिकल एक्सरसाइज करा रही थी, उनको देखकर आप कर रहे थे, ये मन और बुद्धि की एक्सरसाइज है। राजयोग मन और बुद्धि को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाला योग अभ्यास है। तो हम प्रथम आत्मचिंतन में स्थित होते हैं, हमें देख आप भी आत्मचिंतन का अभ्यास करें, फिर हम मन और बुद्धि से इस दुनिया से दूर अपने असली घर परम धाम में जाते हैं। तो अपने मन बुद्धि को पांच तत्वों से पार परम धाम ले जाना है। परम धाम निवासी ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को देखना है, उनके ज्ञान गुणों का चिंतन करना है। हम अभ्यास करते हैं, हमें देखकर भाई बहने अभ्यास करते हैं, पर हम सबको अपना बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। तो राजयोग सहज योग है, प्रवृत्ति मार्ग का योग है, हर कोई अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं। जब हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश सबको देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, हमारे पर जिम्मेवारियां हैं, हम तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्यों ऐसे विचार चलते हैं? क्योंकि योगी बनने के बारे में हमारी गलत समझ ये है कि हम सब कुछ छोड़ें, दुनिया से दूर शांत एकांत में जाएं तो योगी बन सकते हैं। क्योंकि भक्ति में अधिकतर जो योगी बने, तपस्वी बने, घर बार छोड़कर बने, संन्यास लेकर बने। परंतु देखिए राजयोग हमें क्या सिखाता है। हमें दुनिया, जिम्मेवारी, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजयोग हमें और अधिक एफिशिएंट बनाता है। हम अपनी जिम्मेवारियां बहुत शांति से, निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। इसलिए दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेवारियां, परिवार संबंध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देहभान छोड़ने की आवश्यकता है। हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। हमारी इस कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, क्योंकि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए आत्मस्मृति का अभ्यास करते करते हम सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए देहभान छोड़ना है, आत्मस्मृति का अभ्यास करना है। इसमें न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। हमें स्थान नहीं, मनोस्थिति को बदलना है। सोल कॉन्शियस बनना है, गॉड कॉन्शियस बनना है। इसके लिए आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, सत्य ज्ञान का चिंतन, शुभ चिंतन का अभ्यास हमें करना है। मनोस्थिति बदलनी है, स्थान नहीं बदलना है। कोई ड्रेस बदलने से, भगवे वस्त्र पहन लेने से, सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते हैं। हमें ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को बदलना है। हमें अपनी आत्म स्थिति को ज्ञानयुक्त बनाना है। इसलिए केवल सफेद ड्रेस या भगवे वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। ये सफेद ड्रेस इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम इस विद्यालय में फुल टाइम समर्पित है, इसलिए फुल टाइम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। बाकी हमारे लाखों भाई बहने जो अपने घरों से नियमित योग अभ्यास करने आते हैं, सेवा में मदद करने आते हैं, तब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। बाकी उनकी अपनी दुनियादारी, सामाजिक पारिवारिक कार्यों में वो जो पहनना चाहे पहनते हैं। विद्यालय सिर्फ इतना सिखाता है कि हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, मर्यादा पूर्ण वेश परिधान धारण करने हैं, ताकि हम भी सोल कॉन्शियस रहे, हमें देखकर और भी सोल कॉन्शियस रहे। सफेद वस्त्र योगी को पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। इसलिए विद्यालय ने यूनिफॉर्म के रूप में उसको चुना है। बाकी वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। मुख्य बात है हमें अपनी स्मृति को यथार्थ बनाना है, वृत्ति को शुद्ध बनाना है, हमें अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाना है। इस प्रकार से राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप करके खुश होने की बात नहीं है। हम नियम से सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा धूप दीप पूजा पाठ भजन कीर्तन कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूं। राजयोग में सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, कीर्तन, अर्चन करने की बात नहीं है। राजयोग का ध्येय है अब हमें सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से पुजारी से पूज्य बनना है। इस बात को आप भी मानेंगे कि जब तक हम अपने मन वचन कर्म को शुद्ध और श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जीवन की नैया को कोई पार नहीं कर सकता है। हमें अपने सत्कर्मों के बल से अपने जीवन की नैया को पार लगाना है। इसलिए राजयोग का लक्ष्य है पतित से पावन बनना, पुजारी से पूज्य बनना, मनुष्य से देवता बनना। इसलिए इसमें कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई बाह्याचार नहीं है। परमात्मा को याद करने में भी देखिए कोई जोर जोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, हे भगवान, ओ प्रभु, ओ माय गॉड। हमें पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर अधिकतर लोग भगवान से मांगते ही रहते हैं। हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। राजयोग में हमें परमात्मा से मांगना नहीं है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम वारिस हैं। परमात्मा से प्राप्ति करना हमारा अधिकार है। हमें मांगना नहीं है, हमें भगवान का लायक बच्चा बनना। जैसे लायक बच्चे को आप देते हैं ना, आप सब प्रबंध कर देते हैं, आप खुद खा पी के मौज नहीं मनाते हैं, लेकिन योग्य बच्चे के पीछे उनके पढ़ने सीखने के लिए सब प्रबंध करते हैं। हमें भी लायक बच्चा बनना है, मांगना नहीं है, योग्य बनना है। इसलिए योगी बनना अर्थात योग्य बनना। परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बनना। परमात्मा के लिए हम कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। परंतु क्या हम अपने आप को भगवान के बच्चे कहलाने योग्य हैं? नहीं है। हमें योग्य बनना है। इस योग अभ्यास में हमें विनती भी परमात्मा को नहीं करनी है। अक्सर हम दीन हीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को विनती करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, इतनी बुद्धि देना, इतनी शक्ति देना। राजयोग में हमें परमात्मा को विनती भी नहीं करनी, क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा स्वयं ही दाता है। इवन भक्ति में भी हम महिमा गाते हैं परमात्मा के लिए कि वे शांति दाता है, सुख दाता है, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता है, वर दाता है। वो है ही दाता, वो निरंतर दे ही रहे हैं। जो सदा सर्व को दे ही रहा हो, उसको फिर कहना देना देना देना, ये तो और ही इंसल्ट करना है। वो दे ही रहे। हमें स्वदर्शन करने की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि परमात्मा तो सागर है, प्यार का सागर, सुख सागर, शांति का सागर है। वो निरंतर दे ही रहा है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे खुद को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमात्मा से योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्ट होना। आपके शहर में पावर हाउस है, बिजली घर है, आपको अपने घर में बिजली चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, शांति दाता है, सुख दाता है, पर मेरे मन और बुद्धि को मुझे उनसे कनेक्ट करना है। अब आप देखिए, हमने मन और बुद्धि कहीं और कनेक्ट किए हैं, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, आदतों में, विकारों में, व्यसनों में मन बुद्धि अटैच किए हैं, फिर परमात्मा से मांगते रहे। इसलिए राजयोग में खुद को आत्मा निश्चय कर पिता परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, इसको योग कहते हैं। इसको योग कहते हैं। हम रोज मोबाइल पावर पॉइंट से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं ना, हम आत्मा रूपी बैटरी भी डिस्चार्ज है। हमारा न मन पर कंट्रोल है, न वाणी पर संयम है, न कर्म में कंट्रोल है। जो नहीं सोचना चाहिए बार बार सोचते हैं, नहीं बोलना चाहिए तो कहते हैं मुख से निकल गया, नहीं करना चाहिए मैं फंस गई, फालतू मैं इन्वॉल्व हो गई। तो हमारे जीवन की सिचुएशन बताती है कि आत्मा कमजोर बन गई है। अब हम अपने मन बुद्धि परमात्मा से जोड़े, अपने आप को फिर चार्ज कर सकते हैं। मन और बुद्धि को हम स्वच्छ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। योग मीन्स परमात्मा से संबंध जोड़ना, योग मीन्स रिलेशन जोड़ना। एक बच्चा अपने शारीरिक पिता को स्वाभाविक याद करता है, उसे अपने मां पिता को याद करने के लिए कोई क्रियाएं नहीं करनी पड़ती है, उसे नेचुरल याद आते, क्योंकि संबंध है। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, हमारे सर्व संबंध परमात्मा से। अगर वो संबंध हम जोड़े, दिल से स्वीकार करें और मन वचन कर्म से फॉलो करें, हमें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएंगी। देखो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या हमें सबकी याद आती है? आती है नहीं। हमें किसकी याद आती है? जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि जिससे संबंध है, वही तो हमें याद आते हैं। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। भक्ति में हम संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, गाते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा के साथ हम सर्व संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, और फिर सारा दिन देह के ही मित्र संबंधियों को याद करते रहते। तो राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मुख से सिर्फ वर्णन नहीं करना है, हमें दिल से स्वीकार करना है, हमें समझना है ये सब देह के मित्र संबंधी हैं, ये एक जन्म के हैं, ये शरीर छूटेगा ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नए माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी मिलेंगे। तो हमें क्लियर हो कि ये देह के मित्र संबंधी हैं, एक जन्म के, लेकिन मुझ आत्मा के असली अविनाशी सर्व संबंध एक परमात्मा से। परमात्मा ही जब मैं स्वीकार कर लूंगी कि वो ही मेरे असली अविनाशी माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है, तो मुझे हर बात में हर समय सबसे पहले किसकी याद आएगी? परमात्मा की आएगी ना, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ है। तो खुद को आत्मा निश्चय कर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना, निभाना, मन वचन कर्म से फॉलो करना, इसको योग कहते हैं। इसलिए योग का अर्थ है परमात्मा से मिलन मनाना, उनके कनेक्शन में रहना, उनसे संबंध जोड़ना, उनको याद करना, प्यार करना, दिल से उनका बन जाना, उसको योग कहते हैं। ये है राजयोग। तो राजयोग सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण योग है। इस योग में सब कुछ समाया है। भगवान को सत्य रूप से जानना, ये ज्ञान योग, जानकर प्यार करना, उनसे अपनी भावना जोड़ना, भक्ति योग, डिसिप्लिन में चलना, ये हठ योग, इजी योग, नेचुरल योग, हर कोई योगी बन सकते हैं, ऐसा ये योग अभ्यास है। तो लास्ट बात यही आपको बतानी है कि राजयोग इतना सहज स्वाभाविक है कि योग अभ्यास के समय आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अक्सर भक्ति में भगवान को याद करने बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, क्योंकि हमारी समझ गलत है। हम ये मानते हैं आंखें खुली होंगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम ये बाह्य आंखें बंद कर देते हैं। क्या आंखें बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या अनुभव है? भटकता है ना, क्योंकि हमने ये बाह्य आंखें बंद कर दी पर मन की आंखें घूम रही है, तो कैसे एकाग्रता होगी? क्यों नहीं हम बाह्य आंखें खुली रखें, मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करें, हम उनके बारे में सोचें, याद करें, प्यार करें, बातचीत करें और हम उसमें एकाग्र हों। इसलिए हम अपनी आंखें नेचुरल खुली रखेंगे। तो अब हम 10 मिनट योग अभ्यास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, फिजिकली व्यवस्थित बैठ जाएं, कमर सीधी करके, ताकि आप थके नहीं। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल, जो कुछ है एक तरफ समेट के रख दीजिए। माना जैसे कहते हैं ना क्षमा पर परवाना फिदा होता है, हमें मन और बुद्धि से भगवान पर फिदा होना है, क्योंकि वो ही परम शक्ति है। हम आत्माएं तो नंबरवार है, हमारे में न सर्व गुण है न सर्व शक्तियां हैं, इसलिए भगवान पर जो फिदा होता है, माना जिगरी प्यार में समर्पण होता है, तो जितना प्यार उतनी एकाग्रता आती है। प्रथम है मूल सत्य ज्ञान। अब तक हमें पता ही नहीं था परमात्मा कौन है, इसलिए कोई देवात्माओं से योग लगा रहा था, कोई महात्माओं से, कोई धर्मात्माओं से, कोई शरीर पर योग लगा रहा था। हमें योग परमात्मा से लगाना है। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से। हम भगवान को याद करते हैं, पर चेक करिए, कोई सिर्फ नियम से याद करते। हमारा नियम है, हमारे घर का रिवाज है, हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम सुबह शाम धूप दीप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नियम से कर लिया। न सच्चा ज्ञान है, न दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से है। कोई बिल्कुल स्वार्थ से, मतलब से भगवान को याद करते हैं। हमें भगवान से कुछ चाहिए, हमें कुछ मनोकामनाएं पूरी करनी है, इसलिए स्वार्थ से याद करते। कोई भय से भक्ति करते हैं, मुझे कुछ हो न जाए, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मर न जाऊं, मेरे काम में विघ्न न आ जाए, भय से भगवान को याद करते। हमें सच्चे ज्ञान से, पूर्ण निश्चय से, दिल की लगन से परमात्मा को याद करना है। इसलिए समर्पण का मतलब है डिवोशन, उनके प्रति अनन्य प्यार, वो है समर्पण। उनकी आज्ञा पर चलना, अपने कर्तव्य परमात्मा के ज्ञान अनुसार सत्य और श्रेष्ठ करना, ये है प्रैक्टिकल योगी बनना। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। आत्मस्थ होकर मन बुद्धि से परमधाम निवासी शिव बाबा को देखें और याद करें। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से परम धाम जाकर पिता परमात्मा को देखें, उनको याद करें। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन परमात्मा का चिंतन करना है। यह आपका नया अभ्यास है, मैं आपको गाइड करूंगी कमेंट्री के द्वारा। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन दोहराना है, रिवाइज करना है, अर्थ समझना है, रियलाइज करना है। उस रियलाइजेशन में, उस अनुभूति में स्थित होना, उसे गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से वस्तुओं से अलग हो जाइए। साक्षी बन जाइए। देह भान से अलग मस्तक बीच भ्रुकुटी में स्वयं के ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर इस शरीर को चलाती हूँ। इन कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूँ। मेरे लिए यह दुनिया भी एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है। मुझ आत्मा का असली घर इस भौतिक जगत से दूर 5 तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी परे परम धाम है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। 5 तत्वों से भी परे अति सूक्ष्म 6वां महतत्व है अखंड लाल ज्योति तत्व। मैं आत्मा इस ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सत्य हूँ, शुद्ध पवित्र शांत आत्मा। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अविनाशी पिता परम ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव पिता आप शांति के सागर अखुट शांति के भंडार निरंतर शांति दाता है। मैं आत्मा आपकी अमर संतान, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरे प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम मीठे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान, मैं भी सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी संतान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूँ। प्यार के सागर प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं सबके साथ प्यार से चलूंगी, सबको सुख दूंगी। मैं शांत आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप, सुख आनंद स्वरूप हूँ। ओ